अब हम देखते हैं कि गुनाह के दुनियावी आफात क्या होते हैं, यानी दुनिया में गुनाह के क्या असरात होते हैं। गुनाहों के बसबब पानी, हवा, ज़राअत, फलों और घरों पर भी आफत का नुज़ूल होता है। अल्लाहु अकबर। सबसे पहले क्या होता है कि ज़मीन की पैदावार कम हो जाती है, इंसानों की पैदाइश और उम्र में कमी हो जाती है। आसारे मासी में से ये भी है कि ज़मीन पर मुख्तलिफ किस्म की आफतें नाजिल होती हैं, पानी, हवा, फलों और घरों पर तबाहियाँ आ जाती हैं। अल्लाह ताला सूरह रूम में क्या फरमाते हैं, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون। खुश्की और तरी में लोगों की बदअमालियों के बायस फसाद फैल गया, इसलिए कि उन्हें उनके बास करतूतों के फल अल्लाह ताला चका दे, बहुत मुमकिन है कि वो बास आ जाएं। इमाम मुजाहिद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि जालिम हाकिम जब जुल्म फसाद शुरू कर देता है तो बरसात रोक दी जाती है, खेतियां और नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को जुल्म और फसाद पसंद नहीं। इसके बाद आयत के अंदर लफ्ज बहर वारिद है, इससे ये दरिया मुराद नहीं बल्कि हर वो आबादी मुराद है जो जारी और बहने वाले पानी के किनारों पर वाक़े है। इब्ने ज़ैद रहिमहुल्लाह कहते हैं कि ज़हर अल फसाद फिल बर वल बहर के अंदर जो फसाद का लफ्ज आया है इससे मुराद गुनाह है। मैं कहता हूँ इसका मतलब ये है कि गुनाह फसाद और बर्बादी का सबब है। याद रखिएगा, लिख लें अपने नोट्स पे कि गुनाह फसाद और बर्बादी का सबब है। और अगर फसाद से मुराद ऐन मासियत है तो लियुज़ीक़हुम बअज़ अल्लज़ी अमिलू में जो लाम वारिद है वो लाम तालील होगा। पहले माना के रूह से फसाद से मुराद नुकसान, खराबियां, मसाइब हैं जो बंदों के गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला जमीन पर भेजता है। जब बंदे गुनाह करते हैं तो अल्लाह ताला मसाइब और आफतें भेज देता है। जैसा कि बाज़ सलफ़ का कौल है कि तुम जब गुनाह करते हो तो अल्लाह ताला अपनी फरमारवाई में अकूबतें और सजाएं भी भेज देता है। और जाहिर यही है कि फसाद से मुराद गुनाह और गुनाह के मौजूबात हैं। गर्ज ये कि ये तो दुनिया के अज़ाब का हाल है जो बंदों के गुनाहों और बदअमालियों के मुकाबले में बहुत कम है। अगर हकीकत में इंसान के अमाल और गुनाहों की सजा दुनिया में दी जाए तो यकीन कीजिए जमीन पर कोई जानदार चीज जिंदा बाकी न रह सके। इसी तरह आसारे मासी का एक नुकसान ये होता है कि जमीन फटने लगती है। आसारे मासी में से ये भी है कि जमीन शक होने लगती है, आबादियां जमीन के अंदर धंस जाती हैं, जलजले आने लगती हैं, जमीन की बरकतें और उसके नबातात कम हो जाते हैं। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम समूद की आबादियों से गुजरने वालों को हुक्म दिया था कि यहाँ से रोते हुए जल्द से जल्द निकल जाओ और इन आबादियों का पानी ना पियो, यहाँ तक कि हुक्म फरमाया कि इस पानी से जो आटा गोंद लिया गया है फेंक दो और अपने ऊँटों को भी ना खिलाओ। और ये हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था कि कौम समूद के गुनाहों की नहूसत इस पानी में भी सरायत कर गई थी। अल्लाहु अकबर। गुनाहों के शहूमी फलों और दीगर अशिया में भी आती है। देखिए इंसान सोचे ना कि कौम समूद तो सदियों के गुजर गए लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह ने क्यों कहा कि यहाँ से जल्दी से गुजरें और रोते हुए गुजरें और यहाँ कुछ खाएं ना, यहाँ का पानी भी यूज ना करें। क्यों? क्योंकि गुनाह के असरात वहाँ मौजूद चीजों पर भी फैल जाते हैं। तो जिस घर के अंदर में और आप गुनाह करते हैं फिर हम कैसे तस्वर कर सकते हैं कि वो गुनाह वो घर हमारे लिए बरकत का बाइस हो, वो घर हमारे लिए सुकून का बाइस हो, उस घर की चार दीवारी हमें राहत फराम करे, जिस घर की चार दीवारी को हमने अपने ही आमाल और अपने ही करतूतों के बिना पर स्याह और धुंधला कर दिया हो और खराब और फसाद उसने मचा दिया हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर घर में सुकून चाहिए तो क्या होगा? घर के अंदर ऐसे आमाल करने होंगे जिनसे चार दीवारी महफूज रहे, और देखिए यहाँ एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि आजकल ऐसे प्लेसेस पे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मसलन टेक्सला हो गया, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, हम यहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं और ऐसी जगहों पर जाके खाना पीना इंजॉयमेंट, ऐसी जगह इबरत की निगाह से देखने के लिए जाना होती है। यानी ऐसी जगहों पर इंसान इसलिए जाए कि इबरत हासिल करे, ना कि इसलिए कि वहां जाकर इंजॉयमेंट हासिल करे। तो ऐसी जगहों पर इंसान जाए ही ना, और अगर जाए तो इबरत के लिए जाए। और फिर देखें कितने जलजले आ रहे हैं आजकल, क्यों? इंसान के अपने आमाल। और मैंने और आपने अभी पीछे ही पढ़ा ना कि जब हजरत उमर के दौर में जलजला आने लगा तो आपने क्या किया? लोगों को कहा कि अब अगर जलजला आया तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो कि जमीन तुम्हारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर रही। यही हाल उमर बिन अब्दुल अजीज का था। उन्होंने कहा इतनी जल्दी कैसे तुम नाफरमानियां कर सकते हो कि जमीन कांपने लग गई है। तो ये होता है कि जमीन जो कितनी सख्त है वो भी इंसान के गुनाहों की वजह से लरज जाती है और फटने लग जाती है और उसके नबातात खत्म हो जाते हैं और उसका सब्जा तक मुतासिर हो जाता है। अल्लाह अकबर। तो आप खुद सोचें कि जो बंदा कर रहा है उस पर गुनाह का कितना असर जाता होगा। फिर इसी तरह अदल व इंसाफ की बरकत हम देखते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल एक हदीस के जमन में फरमाते हैं, बनी उमैया के खजाने में मैंने एक थैली देखी जिसके अंदर खजूर की गुटली के बराबर घीओ के दाने भरे हुए थे और थैली पर ये अल्फाज लिखे हुए थे कि अदल व इंसाफ के जमाने में ऐसे घीओ पैदा हुआ करते थे। ये तमाम आफतें अल्लाह ताला ने बंदों के गुनाह और नाफरमानियों की वजह से भेजी हैं। नीस बाज बुदवी और देहातियों ने मुझसे बयान किया कि आजकल जो फल यहाँ पैदा हो रहे हैं उससे बहुत बड़े फल यहाँ पैदा होते थे। जो आफतें आजकल आ रही हैं पहले ना थी, कुछ थोड़े ही जमाने से ये आफतें आ रही हैं। यानी फल भी मुतासर हो जाते हैं, फलों के अंदर वो टेस्ट ही नहीं रहता। फिर इसी तरह शक्लों और खलकत में तब्दीली, सूरतों और खलकतों पर भी गुनाह का असर पड़ता है। जामे तिर्मिजी में वारिद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जिस वक्त आदम को पैदा किया इंसान का कद 60 हाथ का था, ये कद कम होते होते वो हो गया जो तुम आज देखते हो। जब अल्लाह ताला जुल्म, खयानत, फिस्क फुजूर से जमीन को पाक करने का इरादा फरमा लेगा तो अहले बैत नबूवत में से अपने एक बंदे को भेजेगा, ये आकर जमीन को अदल व इंसाफ से पुर कर देगा जिस तरह आज ये जमीन जुल्म से पुर हो गई है। उस वक्त फिर से अदल व इंसाफ से पुर हो जाएगी। ये मसीह आकर यहूद व नसारा को कत्ल करेगा और वो दीन जिसे लेकर अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भेजा है फिर कायम और मजबूत हो जाएगा। जमीन अपनी बरकतें उगलने लगेगी जिस तरह के वो पहले उगलती थी, और इस कदर बरकत होगी कि एक अनार से एक पूरी जमात सैर हो जाएगी, और अनार इस कदर बड़ा होगा कि उसके छिलके तले एक जमात साया ले सकेगी। अंगूर का एक खोशा इस कदर बड़ा होगा कि वो एक ऊंट के बोझ के बराबर होगा, और एक बकरी का दूध एक जमात को सैराब करेगा। सुभानअल्लाह। और सही मुस्लिम में ये रिवायत मिलती है। और ये बरकत क्यों होगी? इसलिए होगी कि जमीन जब गुनाहों से पाक हो जाएगी तो अल्लाह ताला की उन बरकतों के आसार नुमाया होंगे जो गुनाहों की वजह से सल्ब कर ली गई थी। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि जो अकूबतें और सजाएं कि अगली उम्मतों पर नाजिल हुई थी उनके असरात आज भी मौजूद हैं। इसी किस्म के गुनाह उन असरात को बाकी रखते हैं, और जिस तरह ये मासी और गुनाह अगली सजा याफ्ता उम्मतों के आसार मासी हैं, उनकी सजाओं के आसार भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला के अहकाम और आलम कौन व फसाद और उसके फैसले से ये बात अव्वलन और आखिर मुतनासिब है। जिस किस्म का गुनाह होता है इसी किस्म की सजा होती है, याद रखिएगा। जैसा गुनाह वैसी सजा, बड़े गुनाहों की बड़ी सजा होती है और छोटे गुनाहों की छोटी सजा, और इसी तरह जो बड़े गुनाह होते हैं ना उनका कफारा भी बड़ा होता है। और इसी तरीके पर अल्लाह ताला आलम बरज़ख में भी लोगों के फैसले करेगा और दारुल जज़ा में भी। غور کرو کہ شیطان سے رشتہ جوڑنے اور بندوں پر اس کے مسلط ہونے سے عمر، عمل، قول، فعل، روزی اور رزق کی برکتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ اور جب زمین پر شیطان کی اتباع و پیروی عام ہو جاتی ہے تو ساری زمین سے برکتیں سلب کر لی جاتی ہیں، تو پھر آخرت میں بھی تو یہی ہونا ہے نا۔ چنانچہ ارباب معاصی کے لیے آخرت میں بھی کوئی سکون اور اطمینان کا ٹھکانہ نہیں، جہنم کے اندر روح، رحمت، برکت، سکون اور اطمینان کا نام تک نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ پھر ہم وہ گناہ کیوں کرتے ہیں جن کا نقصان صرف میرے اور آپ تک محدود نہیں رہتا، بلکہ بہت سی نسلوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں، زمین کی گہرائیوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں۔ میری اور آپ کی دنیا بھی تباہ اس سے ہو رہی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شعور والی نگاہ عطا فرمائیں کہ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ ہم سوچیں کہ اس کا کفارہ کس صورت میں مجھے اور آپ کو چکانا ہوگا، اور اس کا اثر کتنا گہرا ہوگا کہ جس سے زمین کانپ اٹھے گی، جس سے زمین کے خزانے اس کو بھی متاثر کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔